नक्शे कदम पर चलती रही, गाती रही, गुनगुनाती रही, गीत खुशी के हम गाती रही। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधिया तूफान।
ओम शांति। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज क्वेश्चन नंबर है 94, जिसमें प्रश्न है, कौन सी ऐसी स्मृति रहे कि जीवन में हम कभी भी दिल शिकस्त नहीं बन सकते। ये 13 अप्रैल 1983 की मुरली से लिया गया प्रश्न है, जिसका बाबा ने उत्तर दिया है, मैं साधारण नहीं हूं, शिव शक्ति हूं, मैं बाप का और बाप मेरा। इस स्मृति में सदा रहें तो कभी भी अपने आप को अकेलापन अनुभव नहीं करेंगे, कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे और सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। शिव शक्ति का अर्थ ही है शिव और शक्ति कंबाइंड, जहां सर्वशक्तिमान बाप है और हजार भुजाओं वाला बाप, जहां सर्वशक्तिमान और हजार भुजाओं वाला बाप है वहां उमंग उत्साह सदा साथ है। तो यह था बाबा का उत्तर। और कौन से उत्तर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी स्मृतियां हो सकती है जिससे हम कभी भी जीवन में निराश नहीं होंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे। हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। और विजय तो हमारी परछाई है, हमारी परछाई की तरफ पीछे पीछे चलती है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हमारा साथी कौन है, और बाप समान संपन्न हमें ही बनना है, उनके सारे गुणों सारे शक्तियों और खजानों से संपन्न हमें ही बनना है। और हाँ, सफलता का तिलक स्वयं भगवान ने हमारे मस्तक पर लगाया है। और बाबा कहते हैं, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं हूं ना। और एक बार दिल से कहो मेरा बाबा, तो बाप बधा हुआ है आने के लिए। ऐसी बहुत सारे और सी स्मृतियां हैं जो बाबा ने हमें याद दिला, बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। लेकिन इन सभी जो स्मृतियों का आधार है, जो इतनी सारी शक्तिशाली पॉइंट्स है, नशे की पॉइंट्स है, वो सदा हमारे जीवन में काम करे, इसका मुख्य आधार है हम मुरली पर कितना अटेंशन देते हैं, मुरली को कितने प्रेम से, कितने लगन से, कितनी एकाग्रता से सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, कितनी उसमें हमारे उसके प्रति हमारे अंदर भावना है मुरली के प्रति। आजकल तो व्हाट्सएप और मोबाइल फोन का जमाना है, अब से कुछ वर्ष पहले ही लोग एक दो को लेटर लिखा करते थे, लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अपने समाचार, अपने हालचाल का लेन देन करते थे। बहुत मजा आता था। एक दो की भावनाओं को व्यक्त करते थे। एक छोटा सा पत्र है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बेटा कैसे हो, कुशल पूर्वक हो ना। कितने वर्ष हो गए आपको घर से जाकर, वापस कब आओगे? क्या अपने इस बूढ़े माता पिता की सुध नहीं आती? बेटा ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं, आजकल जमाना बहुत खराब है। वैसे अपने को कभी अकेला नहीं समझना, मेरी दुआएं मेरा प्यार सदा आपके साथ है। अच्छा, मैंने जो बेसन के लड्डू भेजे थे वो खाया कि नहीं? और जो आपके साथ में भाई हैं, सुशील भाई जी, डॉक्टर सचिन भाई जी और अन्य जो भाई बहन हैं, उनको दिया कि नहीं? नहीं दिया हो तो दे देना। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ, जल्दी वापस आना। आपकी माँ ब्रह्मा, पिता शिव बाबा। लेटर के एक एक लाइन में कितनी न उनके प्यार की भावना आती थी। पहले जो पत्र लिखते थे, पत्र पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा हमारे सामने आ जाता था। और कभी भी कोई टेंशन की बात हो, कोई फिकर की बात हो, ऐसे पत्र पढ़कर हम एनर्जेटिक हो जाते थे। और अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करते थे। ये सभी को अनुभव होगा। ये तो हुई हमारे मतलब कि लौकिक जो लेटर लिखते थे, लेकिन वो जो हमारा सच्चा सच्चा माता पिता है, जिनका हमारे साथ संबंध अविनाशी है, वो भी कहते हैं कि बच्चे, मैं आप लोगों को रोज 4 पेज का लेटर भेजता हूं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस लेटर को, उस मुरली को कितना महत्व देते हैं, कितने प्यार से, कितने लगन से, कितनी उत्सुकता से हम पढ़ते हैं उसे। बाहर दुनिया में जो टीवी सीरियल्स होते हैं, मूवी होते हैं, उनको व्यक्ति यदि एक बार कोई देख ले तो हमारे अंतर्मन की गहराई तक इतना चला जाता है कि हम चाहकर भी उसे भुला नहीं सकते हैं। इसका वजह क्या होती है, क्या होता है वजह? मोमेंट है, 3D है। हाँ जी, सभी इंद्रियां उसमें एक साथ इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन उसका जो मुख्य रीजन है आकर्षण, उसमें रुचि कितना है। हाँ जी, एकाग्रता ज्यादा हो जाती है वहां। हमें बुद्धि को एकाग्र करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो हमारे दृष्टि को बरबस ही अपनी तरफ खींच लेती है। क्योंकि वहां एक तो दृश्य है, दूसरा शब्द है और तीसरा इमोशन, म्यूजिक भी बैकग्राउंड में होते हैं। ये सारी चीजें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती है और हमारे अंतर मन की गहराई तक उतर जाती है। ऐसे हम जब मुरली पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं तो बाप दादा का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आना चाहिए। और जो हम शब्द सुनते हैं मुरली के पॉइंट्स वो, और जो मुरली के पीछे बाबा का क्या भाव है, हमारे प्रति कितना उनका प्यार है, वो इमोशन भी हमारे दिल में क्रिएट होना चाहिए। उनके प्रति प्यार, रिस्पेक्ट, वो भावना, ये तीनों एक साथ हम लेंगे तो हमारे अंदर भी वो मुरली भी गहराई तक उतरेगी। और ऐसी अवस्था में स्थित होने के लिए बाबा ने बताया है मुरली क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां एक तो संगठन होता है, संगठन का वाइब्रेशन, क्लास का वाइब्रेशन शक्तिशाली, पावरफुल वायुमंडल। और बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि मुरली के पहले कम से कम 15 मिनट योग करने के लिए, जो आधे घंटे योग करते हो तो और ही अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट हमें योग करना चाहिए। उससे हमारे बुद्धि की धरनी तैयार होती है, और फिर हम जब मुरली सुनते हैं तो हम उस मुरली को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ पाते हैं उसके पीछे भाव क्या है, वो सारी मुरली के पॉइंट्स की गहराइयों को, उस इमोशंस को सबको हम फील कर सकते हैं। यहां हम सभी ने मॉर्निंग क्लास में एक बहुत ही अच्छी बात सुनी कि पहले के जो ऋषि मुनि हुए जिन्होंने वेद शास्त्र लिखे, वो जब वेद शास्त्र लिखे तो अपनी एक बहुत ही ऊंची अवस्था में स्थित होकर लिखे। अगर उनके लिखे गए वेद अथवा शास्त्रों को हमें समझना अच्छी तरह से, तो हमें भी अपनी अवस्था को उतनी ऊंची स्थित में स्थित होकर ही सुने, तब हम समझ सकते हैं, नहीं तो उनके भाव और भावनाओं को हम नहीं समझ सकते हैं। उनकी स्थिति यहाँ पर है, हमारी स्थिति यहाँ नीचे है, फिर हम उसको समझ नहीं सकते हैं। और हमारा जो सुप्रीम शिक्षक है, जो परमात्मा शिव बाबा है, वो तो ज्योतिबिंद है, निराकार है। और हम यदि देह भान में आकर मुरली सुनते हैं ऊंची नीची स्थिति में, तो हमें मुरली पॉइंट्स तो याद हो जाएंगे सारी जैसे इन्फॉर्मेशन की तरह, लेकिन हमारे अंतर मन में गहराई तक नहीं उतरेंगे, हम उसका स्वरूप नहीं बन सकते हैं। अगर मेमोरी अच्छी हो तो पॉइंट्स को याद कर सकते हैं, लेकिन वो जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो लगन होना चाहिए, जो परमात्मा का, जो बाबा का प्यार की फीलिंग, वो नहीं आ सकती है। तो हमें उस मुरली को समझने के लिए अपने मन की फ्रीक्वेंसी को उनके फ्रीक्वेंसी पर सेट करना जरूरी होता है। इसके लिए मॉर्निंग क्लास करना, क्लास में करना और इसके पहले योग करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बाबा हमें बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे जब भी मुरली सुनने बैठो तो अपने को आत्मा समझ करके बैठो, देह भान में नहीं बैठो। क्योंकि जब हम मुरली सुनते हैं तो कानों द्वारा हम सब मुरली को ग्रहण करते हैं, और जब आत्मिक स्मृति में होते हैं तो हम साथ साथ में पावर भी लेते रहते हैं, और शक्ति आती रहती है। तो हमें फ्यूचर में बाबा के श्रीमत पर चलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आज हम कोई न कोई श्रीमत का बार बार उल्लंघन करते हैं, श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं, इसका वजह यही है कि हम मुरली के साथ साथ वो पावर, वो शक्ति को नहीं लेते हैं। क्योंकि आजकल जितना तमो प्रधान दुनिया है, निगेटिव वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, इस पर श्रीमत पर चलने के लिए केवल मुरली ही नहीं, साथ साथ में उस पिता की शक्ति भी, उनकी ब्लेसिंग, उनकी दुआएं, ये सब लेना जरूरी होता है, तभी हम मुरली को अच्छी तरह से यथार्थ रीति समझकर फिर उस पर चल सकते हैं। और जब हम इस अवस्था में मुरली को सुनते हैं, जैसा बताया, परमात्मा के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो फीलिंग के साथ मुरली को सुनते हैं, तो वो मुरली हमारे अंतर मन की गहराई तक उतर जाता है। चलिए, मुरली के पॉइंट्स शायद भूल सकते हैं, आज हम अच्छी तरह याद कर लें, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हम सारे पॉइंट्स भूल जाएंगे, कुछ कुछ याद रहेंगे, लेकिन जो जिस स्वरूप में हम स्थित होकर मुरली सुने वो हमारे आगे चल के कर्मों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं सभी के सामने, अंदर से स्वतः ही वो निकलता है। बुद्धि की धरनी, एक तो हम बाबा को याद करके पहले और आत्मिक स्मृति में रहकर तैयार कर सकते हैं। दूसरा, ड्रामा में एक और विधि है बुद्धि की धरनी तैयार करने के लिए, वो कौन सी, जिससे हमारे बुद्धि की धरनी सहज ही तैयार हो जाती है, साक्षी भाव और हाँ जी मनन चिंतन और पांच स्वरूप का अभ्यास और प्राप्तियों को याद करना। बुद्धि की धरनी तैयार करने के लिए ड्रामा ने एक और विधि, ड्रामा में नूद है, वो है हमारे सामने जब कोई न कोई विघ्न आती है, कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है। सपोज हम 10 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं और 10 वर्ष से जब तक हमने मुरली सुनना आरंभ किया तब से लेके अब तक मुरली सुनते आ रहे और जो आरंभ में हमने मुरली सुनी, मुरली के एक पॉइंट्स को ही ले लेते हैं, जैसे आरंभ में हमने सुना कि बाबा बोलते बच्चे एक बल एक भरोसा, किसी का भी आधार नहीं बनाओ, इस शब्द को इस पॉइंट्स को हम शुरू से ही सुनते आ रहे। लेकिन 10 वर्ष के बाद यदि अचानक कोई समस्या आ जाती है, कोई विघ्न आते हैं और उससे हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो हमारा जिनके प्रति भी विश्वास रहता है या हमें लगता है कि वो हेल्प कर सकते हैं, तो हम इनके पास उनके पास भागते फिरते रहते हैं शायद वहां से मदद मिल जाए। लेकिन ये चूंकि खेल है, ड्रामा है, तो किसी की ड्रामा अनुसार हमें मदद भी नहीं मिलती है। फिर हाथ हार कर, थक कर, निराश होकर, दिल शिकस्त होकर बैठ जाते हैं। और जब अचानक किसी दिन मुरली में ये पॉइंट्स आती है, बच्चे एक बल एक भरोसा, सदा बाप आपके साथ है, उस दिन मुरली को हम कैसे फट से कैच करेंगे और ऐसा लगेगा जैसे बाबा ने मेरे लिए ही बोला है। फिर बाबा पर फेथ करके, निश्चय करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, सारे विघ्नों को, सारी समस्याओं को उस पिता के प्रति अर्पण होकर बिल्कुल खाली हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से निश्चय बुद्धि बन करके। उस समय हमें उनके प्यार की फीलिंग, वो विश्वास की फीलिंग हमारे बुद्धि के अंदर, दिल के अंदर गहराई से बैठती है। जब हम उनके प्यार में लवलीन हो जाते हैं तो देखते ही देखते कब हमारे जीवन से वो समस्याएं, वो विघ्न समाप्त हो जाते हैं, वो बीमारियां चली जाती हैं, हमें पता नहीं पड़ता है। वही पॉइंट्स हम जब 10 वर्ष पहले सुन रहे थे, हमने उस पर केयर नहीं किया उसकी, लेकिन अब जाके वही पॉइंट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस बन, कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए अभी क्योंकि समय बहुत कम है तो हमें मुरली के साथ साथ वो पिता की शक्तियों को भी गढ़ करना, ताकि हम जिस समय जो स्वरूप बनना चाहे, सुनते सुनते भी बनने में हमारे लिए इजी हो। इसलिए मुरली पर हमें अटेंशन देना बहुत जरूरी है। अच्छा, कई भाई बहन कहते हैं, उनका कंप्लेन रहता है कि हमारे ऐसा जॉब है, ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा कारोबार है कि हम मुरली क्लास अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन मुरली क्लास अटेंड नहीं कर सकते इसका भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं से हम खुद ही हैं, उसके सूत्रधार हम ही हैं। जब कोई बच्चा नर्सरी से पढ़ाई करते करते लगभग 8वीं 10वीं क्लास तक, स्टैंडर्ड तक जाता है, उसके बाद वो उसके उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि हमें करना क्या आगे चल करके, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है या कोई स्कूल का प्यून बनना है। जैसे अपने गोल को सामने रखता है, वो लक्ष्य को सामने रखता है, उसी अनुसार वो उतनी मेहनत से उतनी लगन से उसके तरफ अपने आप को फोकस करता है, उस लक्ष्य के तरफ। उसके साथ में उसके हमजिंस और बहुत से होते हैं जो इधर उधर खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, कभी मूवी कभी थिएटर जाएंगे, लेकिन वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल अलग ही होगा, क्योंकि उसने अपना एक लक्ष्य रखा है। हम भी जब कोर्स करते हैं, ज्ञान में आते हैं, कुछ समय के बाद जैसे जैसे हमें बाप में निश्चय बैठता है, मुरली में निश्चय बैठती है, उसी समय हमें डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है। यदि हमने मुरली पर उतना अटेंशन नहीं दिया, अलबेलापन दिखाया उसमें, तो भविष्य में जब भी मुरली के क्लास का समय रहेगा, हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि हाँ जी चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं, अब तक मुरली पढ़ के कौन से लक्ष्मी नारायण बन गए। वो मुरली क्लास का उतना महत्व नहीं देते हैं। यदि हम आज ही दृढ़ संकल्प करें कि हमें मुरली क्लास कैसे भी करके अटेंड करना ही है, तो कुछ समय के बाद अपने आप को हम मुरली क्लास में ही देखेंगे, क्योंकि जो संकल्प होते हैं वो हमारे मंजिल तक खुद ही पहुंचाते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, वो दृढ़ संकल्प है, वो संकल्प ही हमारे रे रास्ते बनाते हैं। कहीं पर जगदीश भाई जी ने लिखा है कि संकल्प ही हमारे जीवन के लीडर होते हैं, वही हमारे नेता होते हैं जो हमारे जीवन की नैया को उस मंजिल तक लेके जाते हैं। यदि हमने संकल्प रखा है कि हमें महान बनना है, महान कर्तव्य करना है, तो ये हमारे संकल्प ही हमें उस महानता तक लेके जाएंगे। हां, लेकिन वो उस महानता तक ले जाने का उसके तरीके अलग हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े कठिन रास्तों से होकर के जाएगा, लेकिन जाएगा वहीं पर। एक छोटा बच्चा होता है 5-6 वर्ष का, बहुत ही छोटा होता है, वो किसी अपने रिलेटिव किसी संबंधी के पास जाता है कुछ दिन के लिए। वहां उसे एक दिन खाने के लिए वो नारियल मिलता है, पहली बार लाइफ में खाता है, छोटा रहता है वो, फर्स्ट टाइम उसका रहता है खाने का, खाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, परंतु उसका नाम याद नहीं रहता है, अब पूछने का भी वो बुद्धि में नहीं आता कि पूछूं क्या नाम है, वो छोटा रहता है। जब वो वापस घर पे आता है, उसकी मम्मी बोलती है, बेटा कैसा लगा वहां जा करके, कहाँ कहाँ घूमे, अच्छा क्या क्या खाया तुमने, तब वो बताता है, मम्मी मैंने ना वो वाइट वाइट वो खाया, बहुत अच्छा लगा। क्या वाइट वाइट? हाँ वो वाइट वाइट था। उसकी मम्मी समझे कुछ खाया होगा, कोई बात नहीं। उसके मन में कभी कभी वो खाने की इच्छा होती थी कि काश वो मिल जाए तो फिर खाता। उसके घर में एक उनका इष्टदेव था जिनके जहां पर वो लोग अपनी पूजा आराधना करते थे, तो उसके भी क्योंकि लौकिक के जो संस्कार होते हैं बच्चों में भी आते हैं, तो वो भी अपनी प्रॉब्लम से लेकर के कभी कभी जाता था इष्टदेव के पास। एक दिन उसके मन में बहुत ही दृढ़ इच्छा हुई खाने के लिए, तो अपने इष्ट देव के पास गया। बच्चे होते तो खाने के लिए ही मांगेंगे। बोलता है कि प्रभु जी मुझे वो वाइट वाइट वाला चाहिए खाने के लिए, बहुत मन में आ रहा है। संयोग से उसका जो रिलेटिव थे वो उस दिन उसके घर आते हैं, अपने बैग में खाने पीने की बहुत सारी चीजें लाते हैं। उस घर में और भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जब उनको देखते हैं तो दौड़ के उनके पास जाते हैं और अपने बैग से वो एक एक वस्तु निकाल निकाल के देने लगते हैं। किसी को बिस्किट मिलता है, किसी को चॉकलेट मिलता है, किसी को कैडबरी मिलता है। जब इसकी बारी आती है तो पूरा अखा नारियल ही उसके हाथ में पड़ता है और उसके बच्चे के हाथ में देता है। वो तोड़ा हुआ टूटा हुआ नहीं रहता है, वो पूरा साबुत रहता है, अखा रहता है। जब उसके हाथ में मिलता है तो सोचता है क्या है ये, सबको कितना अच्छा अच्छी अच्छी चीजें मिले, मुझे ये देखो ना क्या दे दिया। थोड़ा उसके मन में निराशा झुंझलाहट होती है, थोड़ा हल्का सा क्रोध भी आता है, कुछ बोलता नहीं है। वो कुछ समय के बाद जाता है अपने इष्ट देव के पास और थोड़ा गुस्से में आकर उसको जमीन पर फेंकता है, पता नहीं हमें क्या दे दिए। जब जमीन पर वो पड़ता है, नारियल टूटता है, उसमें से वो निकलता है नारियल, वो वाइट वाइट। जब उसे देखता है तो उसे आश्चर्य होता है, उसके मन में खुशी की लहर आ जाती है और सोचता है कि हाँ ये तो मुझे यही चाहिए था। वो उसे उठाता है और दौड़ कर मम्मी के पास जाता है, बोलता है मम्मी हाँ यही मैंने खाया था, ये हमें मिल गया, और बहुत खुशी से खाता है। हम भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखते हैं, कुछ ऊंचा करने के लिए, कुछ महान करने के लिए। यदि हमारे अंदर उस लक्ष्य तक पहुंचने में कोई वीकनेस है, कोई गुण की कमी है, कोई दिव्यता की कमी है, तो उस कमी को फील करने के लिए, उस विशेषताओं से भरपूर करने के लिए, यदि कोई कमजोरी है तो उसमें शक्ति भरने के लिए, जो हमारे संकल्प किए हुए हैं कि मैं महान आत्मा हूं, मुझे महान बनना है, तो वो संकल्प हमें उन्हीं टेढ़े मेढ़े रास्तों से, पथरीले कंटीले रास्तों से होकर होते हुए लेके जाएगा, क्योंकि उसी रास्ते से ही हम शक्तिशाली बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। भले वो हमारे सामने परिस्थिति के रूप में, विघ्न के रूप में आएंगे, उसमें हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमें वो कुछ न कुछ देने के लिए आया है, कुछ न कुछ हमें सिखाने के लिए आया है। उसी नारियल की तरह जो हमें लगता है कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर हमारे कल्याण की कुछ न कुछ बात छिपी हुई रहती है। इसलिए कभी भी जीवन के मोड़ पर ऐसी कोई बातें आए तो उसमें हमें निराश होकर, दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाना है, बस कि उस पिता की याद में उस पर चलते रहना है। मंजिल पर खुद ही खुद पहुंच जाएंगे। अभी दिल शिकस्त न हो, इसके लिए बाबा ने हमें बताया है अपने स्वमान में रहने के लिए, स्वमान को घड़ी घड़ी स्मृति में लाने के लिए। कभी कभी हम अपने आप को साधारण समझने लगते हैं तो हर एक छोटी बातें भी हमें बड़ी लगती है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहीं से जा रहा होता है और समझो कि उसके आसपास बहुत सारे भाई बहन बैठे रहते हैं, उनके बीच से ऐसे गुजर रहा होता है, अचानक उसका पांव फिसलता है या कहीं ठोकर लगती है तो जमीन पर पड़ता है। जैसे ही जमीन पर पड़ता है वो अपनी चोट को नहीं देखता है, पहले उठ के इधर उधर देखता है, कोई देखा तो नहीं, और दो चार भाई बहन ये हंस दिए उसके ऊपर, अगर हंसी आ गई तो और ही अपने आप को अपमानित या शर्मिंदगी महसूस करता है। यदि वही व्यक्ति किसी खेल के मैदान में हो, जैसे क्रिकेट मैच चल रही हो और वहां वही व्यक्ति वो फील्डिंग कर रहा हो, तो उसके पास जो गेंद आई उसे कैच करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए वो अपने आप को कितना झुका देता है, वो डाई लगाता है, जमीन पर गिर जाता है, उस गेंद को पकड़ के रखता है, उस कैच को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है। वहां अपने आप को वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वहां उसे पता है कि ये खेल है, हमारे इस कर्तव्य से भले मैं गिर गया पड़ गया लेकिन उस कैच को पकड़ के रखा, हमारे इस कार्य से हमारी टीम की जीत हो सकती है, हमारे देश की जीत हो सकती है, उसका वो नशा, उसका वो सम्मान रहता है। और इस कर्तव्य के लिए, इस परफॉर्मेंस के लिए चारों तरफ से हजारों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट होती है। वो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करता है क्योंकि वहां वो खेल है, खेल समझता है, उस एक तरह से उसके लिए सम्मान है। हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, परेशानियों को अगर खेल समझकर समझे कि खेल है ये, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ही जीतेंगे, कल्प कल्प के विजयी आत्मा है, तो कभी भी वो निराश दिल से कष्ट नहीं होंगे। अपने आप को यदि जीवन में चलते चलते झुकाना पड़े, सहन करना पड़े, झुकते हुए भी सहन करते हुए भी, जैसे वो गिर के भी झुक के भी वो कैच को नहीं छोड़ा, ऐसे हमें सहन करते हुए झुक के भी अपने अंदर की प्योरिटी को, शांति को, वो धैर्यता को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है। वहां उस कर्तव्य के लिए जो परफॉर्मेंस दिया खेल के मैदान में, वह हजारों लोगों की तालियां बजती है। यहां हम ऐसा खेल दिखाते हैं तो किसकी ताली बजती है? स्वयं भगवान हमारे लिए ताली बजाते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाबा बोलते हैं कि बच्चे आप स्टेज पर हो, आपको लाखों करोड़ों आत्माएं देख रही हैं, तो हमारे इस सूक्ष्म में उन लोगों की भी, उन आत्माओं की भी तालियां बजती है जो भविष्य में जाकर दिखाई देगी। इसलिए सदा स्मृति रहे कि वो भगवान है, वो पिता है, सदा हमारे साथ है, वो बैकबोन है, हर पल हर घड़ी वो मदद देने के लिए तैयार है। तो ऐसी सम्मान की स्मृतियां, इन स्मृतियों में रहें तो कभी भी हम दिल से कष्ट नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। Yeah।
बात है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।